नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दो बार स्थगित करने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में पहली बार स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोहराया कि सरकार चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सदन में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जा सकती है। बाद में राज्यसभा ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर लौटा दिया। ये अक्टूबर में जारी मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा ने विशेष उल्लेख पर विचार किया, जहां सदस्यों ने तत्काल महत्व के मुद्दे उठाए। कामकाज संपन्न होने के बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में इस महीने के 8 तारीख को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। सदन में 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। आज संसद भवन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों चर्चाएं खत्म होने के बाद सरकार राज्यसभा में भी चर्चा कराने का प्रस्ताव करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 68,393.67 करोड़ रुपए जारी किए हैं। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर और दक्षिण के बीच संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा कि यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और बढ़ाता है। रेलवे चौथे काशी तमिल संगमम के लिए कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयम्बतूर और वाराणसी के बीच 7 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियां कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों के लिए निर्बाध यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा में समय में आगमन सुनिश्चित कर रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल है जो नागरिकों को पारदर्शी और उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऐप को डाउनलोड कर इसका लाभ उठा सकते हैं और वे किसी भी समय अपने फोन से इस ऐप को हटा भी सकते हैं।
ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैरियर बैटल ग्रुप की तत्काल तैनाती की, जिससे पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों और मकरान तट के करीब रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्री त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, ये भारत की प्रतिबद्धता, तत्परता और प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है। नौसेना प्रमुख ने बताया कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया अपने अंतिम चरण में है। इसका उद्देश्य 6 उन्नत पनडुब्बियां खरीदना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देश कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दिल्ली में ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में श्री पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और लड़ाकू विमान SU-57 राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। श्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों देशों का व्यापार बढ़कर $63 अरब हो गया है, जो 2030 तक $100 अरब तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।